नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक दुनिया एक आवाज़ में, जिसे आप तक लाए हैं वन वर्ल्ड साउथ एशिया, जिसमें आज हम बात करेंगे पानी बचाने पर। मैं हूं आपकी अपनी साथी रिचा और मेरे साथ है मेरे दोस्त राहुल।
दोस्तों, मेरा भी आप सबको प्यार भरा नमस्कार।
दोस्तों, इंसान खाना खाए बिना कुछ दिन रह सकता है, लेकिन पानी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता।
आपने सही कहा रिचा, हमारे शरीर में भी 80% पानी होता है। इसी पानी के कारण हमारे शरीर की अंदर की गंदगी बाहर निकलती रहती है, जिससे हम स्वस्थ व तंदुरुस्त रहते हैं।
लेकिन राहुल, राजस्थान के ज्यादातर हिस्से तो डार्क जोन में आ चुके हैं, क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं और इस वजह से तो जल्दी ही पानी के लिए हाहाकार मचने वाला है।
हाँ रिचा, मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध पानी के लिए ही लड़ा जाएगा, और यह बात सच होती नजर आ रही है।
हाँ राहुल, आज भारत देश में ही तमिलनाडु और कर्नाटक कृष्णा नदी के जल के लिए काफी समय से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, और तो और अब तो चीन और भारत के बीच भी ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर तूतू मैं होनी शुरू हो गई है।
आज हमें अगर पानी को बचाना है तो हमारे पास एक ही उपाय है, और वह है वर्षा जल संग्रहण। अगर हम वर्षा जल को बचाने का प्रयास करें तो हम अपने लिए तो पानी बचाएंगे ही, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी पानी उपलब्ध होगा।
तो चलो हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्षा जल का संग्रहण किस तरह से किया जा सकता है।
आज हम बात करते हैं विनोबा ज्ञान मंदिर के निदेशक अवध कुमार जी से, जो पिछले कई वर्षों से वर्षा जल संग्रहण पर कार्य कर रहे हैं।
तो आइए बात करते हैं अवध कुमार जी से और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं।
सर, आप थोड़ा बताइए कि हम बारिश के पानी को किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं।
वर्षा जो है जल का सबसे बड़ा माध्यम है, उससे धरती के ऊपर और धरती के नीचे दोनों के पानी के स्तर में वृद्धि होती है। अब जहाँ तक संग्रह की बात है, ये उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जल संग्रह की अलग व्यवस्था हो सकती है, रेगिस्तानी क्षेत्र की अलग व्यवस्था हो सकती है। हम यहाँ इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि राजस्थान की परिस्थिति में जो जल की स्थिति है उस पर संग्रह कैसे करें। तो जल का उपयोग शहर के लोग भी करते हैं, गांव के लोग भी करते हैं, उसका अलग अलग तरीके हैं। जैसे गांव में अगर जल संग्रह की बात देखें, वर्षा जल संग्रह की बात देखें, तो मुख्य आधार खेती है। खेती में जल की आवश्यकता होती है। वहाँ की जो भौगोलिक बनावट होती है गांव की, उसमें जल संग्रह के लिए तालाब की आवश्यकता आवश्यक है, ये निकट आवश्यक है। और रेगिस्तानी इलाके में देखें तो अलग तरीके से खटीन बनता है, कुएं बनती है, तो कई तरीके अपने राजस्थान की परिस्थिति में ये चलता है। शहर में अगर देखते हैं तो शहर में पानी आम तौर पर परंपरागत ढंग से बहता रहा है, लेकिन रेगिस्तानी इलाके के शहरों में देखेंगे तो टांके बनाए जाते हैं। अब यह आवश्यकता बढ़ गई है कि जो जहाँ पर टांके नहीं बनते हैं, वे अपने घरों में छत के पानी का उपयोग करने के लिए संग्रह करें। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उन तरीकों को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था सोचनी होगी कि उसका क्या माध्यम बने। तो गाँव की दृष्टि से देखें, एक तो किसान अपने खेत में मेड़बंदी करके उस पानी को एक सीमा तक रोक सकता है। अधिक बारिश होती है तो बह के जाता है, तो आसपास के इलाके में जहाँ तालाब की गुंजाइश होती है वहाँ तालाब बनाया जाए, नाले अगर हैं तो नालों को बांध कर निकट बना करके वहाँ पानी रोका जाए, ताकि उस इलाके का जलस्तर में वृद्धि हो, और अधिक पानी अगर है तो उस पानी के उपयोग सिंचाई में किया जा सके। ये तो गाँव की स्थिति है, लेकिन अब जो वर्षा की स्थिति देखी जा रही है उसमें गाँव में भी छत के पानी का उपयोग करने के लिए टांके बनाने की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि हैंडपम्प लगे हैं लेकिन उसमें पानी का स्तर नीचा जा रहा है। अगर वहाँ छत के पानी को ढाणियों में, खेतों में और गांव में इकट्ठे किया जाए तो जल स्तर में वृद्धि हो सकती है। यही स्थिति शहरों में भी है। शहर में बोरिंग कर देते हैं लोग, लेकिन उसका जल स्तर 300 फुट, 400 फुट, 600 फुट तक चला गया है। तो अगर हर परिवार के लोग अपने छतों को पानी को अपने क्षेत्र में ही, अपने बाउंड्री में ही रिचार्ज के लिए टांके या ओपन बनाएं, तो उससे जल स्तर बढ़ सकता है। इस प्रकार अनेक तरीके हैं जिससे कि जल स्तर को बढ़ाने के लिए और वर्षा के पानी के उपयोग करने के लिए अपनाए जा सकते हैं।
सर, अब जो बारिश का पानी हम इकट्ठा कर चुके हैं अलग अलग माध्यम से, उसे उपयोग में लेने के लिए उसे साफ कैसे किया जा सकता है, उसका क्या तरीका है, थोड़ा सा वो बताइए।
जैसा कि आपने कहा कि पानी का उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि उसे साफ और शुद्ध रखा जाए, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा कि जो स्थिति अपने देश में है उस परिस्थिति में पानी को साफ कैसे रखें। एक तो गांव की परिस्थिति को देखें, तो गांव में तालाब है, निकट है, कुएं हैं, उसका पानी साफ रखने के लिए ज़रूरी है कि अब तालाब में लोग साबुन भी धो लेते हैं, गंदगी फैलाते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, तो उससे बचना पड़ेगा ताकि तालाब का पानी या निकट का पानी साफ रहे। कुएं पर भी सफाई रखनी पड़ेगी। अब गांव में ओपन कुएं कई जगह होते हैं, उसमें कबूतर चिड़ियों की गंदगी जाती है, उससे भी बचाना पड़ेगा। ये तो बड़े पैमाने पर जो पानी संग्रह होता है उसकी सफाई की बात है, और दूसरी बात यह है कि जो शहरों में या गांव में पीने के पानी का जो उपयोग करते हैं उसका सफाई का ज़्यादा महत्व है। उसके लिए आवश्यक है कि पानी जिसका जो भी पानी का उपयोग करें उसको छान करके करें, या संग्रह करते हैं तो अगर साधन हो तो फिल्टर के रूप में उसको साफ करें ताकि उसमें गंदगी नहीं जाए। और पश्चिमी राजस्थान में हम देखते हैं कि जहाँ पर टाके हैं वहाँ टाके का पानी शुद्ध रखने के लिए उस पर जाली लगा देते हैं, या बारिश के पहले उसकी सफाई करते हैं ताकि उसमें गंदगी नहीं जाए। इसी प्रकार अगर कुआँ है तो उस पर जाली लगाते हैं, और जो कचरा नहीं डालें इसके लिए शिक्षण की ज़्यादा आवश्यकता है। जब तक सामान्य व्यक्ति इस बात का ध्यान नहीं रखेगा तब तक वो पानी शुद्ध नहीं रह पाएगा, और उसके बिना जो बीमारियां फैलती हैं उसको रोकना संभव नहीं हो सकता है।
सर, बारिश का पानी जो इकट्ठा करते हैं या तो एक घर में या कॉलोनी में, तो इसमें आपके अनुसार अंदाजन कितना खर्चा आ जाता है?
इसमें दो तरह से देखना होगा। एक तो जिस घर में हम रहते हैं उस घर का पानी अपने घर में ही अगर संग्रह करना है तो उसकी क्या स्थिति बनती है। दूसरा, जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी में अगर सामूहिक रूप से वर्षा जल को संग्रहित किया जाए, रोका जाए, तो उसके खर्चे की क्या स्थिति बनती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये घर के अंदर अगर हम वर्षा जल संग्रह करना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा खर्च नहीं है। अगर 500 गज तक की का एरिया अपना है मकान का, थोड़ी सी जगह है, उसमें वर्षा जल संग्रह करने के लिए मुख्य रूप से पाइप की ज़रूरत पड़ती है, जो छत के पानी को नीचे लाने के लिए जितने पाइप की आवश्यकता पड़ती हो, और एक छोटी कुई बना लें अगर, क्योंकि राजस्थान में कुई बनाने वाले कारीगर काफ़ी होते हैं जो कि कम से कम जगह में उसको नीचे तक 20 फुट तक 25 फुट तक गहराई तक खोद लेते हैं। आजकल सीमेंट की जालियाँ आती हैं जिसको लगा दें, उसमें 5 से 7 हज़ार रुपये तक का खर्च में एक छोटे मकान में वर्षा जल संग्रह का काम किया जा सकता है। दूसरा, अगर कॉलोनी में करना हो तो इसमें थोड़ा खर्च अधिक है। इसके लिए पानी के छत की बनावट, उसके ढलाव को देखना पड़ेगा पानी का। इसका खर्च तो कॉलोनी की स्थिति पर निर्भर करता है। सामूहिक रूप से एक सर्वेक्षण किया जाए और देखा जाए कि 10 घरों में 5-15 घरों के बीच में एक कुई बनाई जाए तो अनुकूल रहेगा, या ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जाए, इसका आकलन तो उस इस एरिए की उस परिस्थिति को देख करके ही करना पड़ेगा। और वर्षा जल संग्रह का खर्च अगर गांव की दृष्टि से देखें तो अलग स्थिति बनती है। वहां तो बड़े एरिए में पानी का संग्रह होता है, तालाब है निकट में। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आजकल ग्रामीण विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, नरेगा जैसे कार्यक्रम, इसमें अगर ग्राम सभा गांव के लोग बना के दें तो उस खर्च की पूर्ति हो सकती है। इसके लिए कोई आर्थिक संकट का प्रश्न नहीं है, केवल सोच में व्यावहारिकता लाने की जरूरत।
सर, आज हम सब जानते हैं कि पानी को बचाने के लिए अथक प्रयास हमें करने होंगे, तो बारिश के पानी को बचाने के अलावा और क्या तरीके हैं जिससे हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें और उपयोग में ले सकें?
जहाँ तक मैं समझता हूँ आज की परिस्थिति में पानी का दैनिक उपयोग जो करते हैं उसको बचाना एक अनिवार्यता हो गई है। उसके बिना हम पानी के संकट से दूर नहीं हो सकते हैं। खासकर शहरों में, कॉलोनियों में जो पानी आता है उसका उचित उपयोग करें, सीमित उपयोग करें, तो पानी बच सकता है। केवल वर्षा के पानी का प्रश्न नहीं है, बल्कि पानी का जो पूरा स्रोत है उसमें जो कमी आ रही है उसके लिए भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक उपयोग में जो पानी लेते हैं उसको संयमित करके उपयोग करने की आदत बनानी पड़ेगी। इससे हम राजस्थान की परिस्थिति में देखें तो एक समय था जबकि राजस्थान में कम पानी था, कुओं से पानी खींचते थे, टांकों से पानी लाते थे, तो लोग एक बाल्टी के पानी से सारा काम कर लेते थे। आज क्योंकि पानी नलों में आता है, अफरात आने की उम्मीद रहती है, अपेक्षा रहती है, तो पानी का उपयोग दिल खोल कर करते हैं और इस तरह पानी के कई गुना ज़्यादा खर्च करने लगे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि जो जैसे हाथ धोते हैं तो नल कम खोलें, या इसमें बगीचे में पानी देने की वृत्ति जो बढ़ गई है उसमें अगर फव्वारा लगाते हैं या लॉन कम लगाते हैं तो पानी का उपयोग हो सकता है। उसी प्रकार जो बर्तन धोने के काम में, स्नान करने के काम में या फलसों में जो पानी डालते हैं उसमें कम से कम पानी का उपयोग हो, इस विधि को अपनाना होगा। अब इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे कि पानी बर्बाद नहीं करे। जो पानी बहता है उससे अगर अपने घरों में अगर थोड़ा बाग बगीचा का स्थान हो तो जो बेकार पानी आता है उसको ही उसमें उपयोग करें, तो पानी जो नालियों में बह जाता है उससे बचा जा सकता है। इस प्रकार दैनिक जीवन में ऐसी आदत बनानी पड़ेगी जिससे कि पानी कम से कम खर्च हो, तभी आज का जो पानी का संकट है वह दूर हो सकता है।
दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज में। आज हम बात कर रहे हैं जल संग्रहण पर।
अरे रिचा, बारिश के पानी को बचाना कितना आसान है। पहले मैं सोचता था कि बारिश के पानी को बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, पर अब मैं भी बारिश के पानी को इकट्ठा करूंगा।
हाँ राहुल, अगर हम सब लोग मिलकर थोड़ी सी कोशिश करें तो बारिश के जल को इकट्ठा कर सकते हैं और उस जल को आसपास के पेड़ पौधों में डाला जा सकता है, और इसके अलावा घर के छोटे मोटे कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और साल भर तक उस पानी को चलाया भी जा सकता है।
हाँ रिचा, आज ऐसे हालात हो चुके हैं कि इन सभी बातों को हमें मानना ही होगा और इन बातों को अपने जीवन में उपयोग करना होगा।
हाँ दोस्तों, पूरी पृथ्वी पर सिर्फ 1% पानी ही पीने योग्य है, उसमें भी राजस्थान की हालत तो और भी गंभीर है। राजस्थान के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पानी की बहुत कमी है, परिवार के लोगों को मीलों पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है।
दोस्तों, प्रदेश में जल की हालत अच्छी नहीं है,